नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एम्स एक ऐसा अस्पताल है जो पूरा कभी नहीं बनता, टुकड़े टुकड़े में बनता है और कई मामलों में 10-15 साल निकल जाने के बाद भी बनता रहता है। अब चुनावी कारणों से एम्स को चालू किया जाने लगा है, लेकिन उसमें भी कुछ विभागों के सहारे इसे शुरू कर दिया जाता है। यह एम्स की कमाल की कामयाबी है कि वह सरकारी अस्पतालों का चुनावी मॉडल बन गया है, लेकिन इसकी आड़ में पूरा एम्स कभी नहीं बन पाता और एम्स बनने के नाम पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों की कड़ियों को भी अधर में छोड़ दिया जाता है। मरीज एम्स बनने का सपना लेकर आधी नींद में पटना से दिल्ली, भोपाल से दिल्ली भागता रहता है। जब आम लोग एम्स का नाम लेते हैं तो उसका मतलब केवल एम्स नहीं होता बल्कि टॉप क्लास सरकारी अस्पताल भी होता है। लेकिन जब कोई सरकार एम्स की बात करती है या कोई राजनीतिक दल एम्स का नाम जपता है तो उसमें एक तरह की चालाकी होती है। एम्स का नाम तमाम सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बदले लिया जाने लगा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक अस्पतालों की कई श्रेणियां आती हैं। ये कड़ियां ध्वस्त होती जा रही हैं। इसे ठीक किए बगैर एम्स तमाम अस्पतालों का विकल्प नहीं बन सकता। अव्वल तो एम्स को भी एम्स की तरह नहीं बनाया जा रहा है। किसी राज्य किसी जिले को एम्स मिल जाता है, लेकिन कई साल तक वह एम्स की इमारत के रूप में खड़ा रहता है। उसके भीतर के विभाग खाली खंडहर नजर आते हैं। लोगों को लगता है कि जिला अस्पताल तो कभी ठीक नहीं होगा, एम्स ही आ जाए और एम्स के आने और बनने में और 10-15 साल निकल जाते हैं। आम आदमी जहां होता है वहीं रह जाता है। एम्स का मकसद क्या है? श्रेष्ठ मेडिकल शिक्षा देना, मेडिकल की पढ़ाई और रिसर्च में श्रेष्ठ मानक तैयार करना और मरीजों को, गरीब मरीजों को सस्ता और बेहतर इलाज देना। यह उम्मीद सभी अस्पतालों से की जाती है, मगर एम्स से कुछ ज्यादा की जाती है। अगर पढ़ाने वाले सीनियर प्रोफेसर फैकल्टी नहीं होंगे तो मेडिकल के छात्र और दूसरे डॉक्टरों को मेंटरशिप नहीं मिलेगी। हमारा सवाल है कि अगर एम्स में मेडिकल के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, मरीजों के लिए डॉक्टर नहीं होंगे और बाकी स्टाफ नहीं होंगे और ठेके पर लोग रखे जाएंगे, तो क्या इसके आधार पर उस एम्स का निर्माण हो सकता है जिसके लिए जनता उसके सपने देखती है? आज के अखबारों में विज्ञापन आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसी के साथ 125 मेडिकल छात्रों का पहला बैच भी शुरू हो रहा है। इस विज्ञापन में लिखा है कि 1011 करोड़ से 112 एकड़ में विस्तृत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की सुविधा वगैरह का जिक्र है। यह इमारत बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो बात विज्ञापन में नहीं बताई गई है वो ये कि अभी कितने फैकल्टी यहां नहीं है। इसका जवाब सरकार ने 3 दिसंबर को लोकसभा में दे दिया है। बताया है कि गोरखपुर एम्स में 183 फैकल्टी के पद मंजूर किए गए हैं, लेकिन इस वक्त 118 फैकल्टी नहीं है, 64% पद खाली हैं, आधे से ज्यादा। लेकिन प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, शायद चुनाव है। ऐसा ही होता है, अस्पताल चालू हो जाता है और आने वाले वर्षों में डॉक्टर आते रहते हैं और पद भरते रहते हैं और भरते भी नहीं है। पिछले महीने यानी 11 नवंबर के हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है कि एम्स में अस्पताल का पहला ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है। देखिए, इसके तहत 400 नर्सों की भर्ती एम्स प्रशासन कर रहा है। प्राइवेट अस्पताल खुलता है तो पहले दिन से सारे डॉक्टर और नर्स तैनात होते हैं, लेकिन एम्स के साथ ऐसा क्यों होता है? हजारों करोड़ के बजट के बाद भी कई साल से 30-40% पद खाली रह जाते हैं। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि एम्स में एक डॉक्टर की बहाली की प्रक्रिया कितने महीने में पूरी होती है, तब पता चलेगा। गोरखपुर एम्स नया है, लेकिन दिल्ली के बाद जो 6 एम्स खुल चुके हैं, जिनको अब पुराना एम्स कहा जाता है, जिनके खुले हुए कई साल हो गए हैं, उनके यहां भी फैकल्टी के पद काफी खाली हैं, नॉन फैकल्टी के पद भी खाली हैं। इन 6 में पटना एम्स, जोधपुर, भुवनेश्वर, रायपुर, ऋषिकेश और भोपाल एम्स को गिना जाता है। 2018 में संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में एम्स जैसे संस्थानों में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी स्टाफ की कमी पर चिंता जताई थी। लिखा था कि इस समस्या को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि इससे संस्थान में मेडिकल की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्थायी समिति ने सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से 6 एम्स में 55-83% तक पद खाली होने पर चिंता जताई थी। नॉन फैकल्टी पदों में से 77% से लेकर 97% पद खाली थे। एम्स रायपुर के सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए 81 पद मंजूर किए गए थे, 60 खाली थे, 74% रिक्त। एम्स पटना में भी सुपर स्पेशलिटी के 86 पद मंजूर किए गए मगर 65 खाली थे, यानी 75% पद खाली। सुपर स्पेशलिटी विभाग में ही अगर 60%, 75% पद खाली हों तब फिर वो किस बात का एम्स हो जाता है? ठीक है, यह रिपोर्ट 2018 की है, लेकिन क्या 3 साल बाद हालात में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? इसी 3 दिसंबर को लोकसभा में सांसद शर्मिष्ठा सेठी के सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने जो जानकारी दी है उससे यही लगता है कि अभी भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। 3 दिसंबर के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह बात लिखी है कि पुराने 6 एम्स में फैकल्टी के 1830 पद मंजूर हैं, लेकिन 703 पद खाली हैं, करीब 38% पद खाली हैं। सीनियर रेजिडेंट के 2262 पद मंजूर हैं, लेकिन 957 पद खाली हैं, 42% पद खाली हैं। बिहार में कोरोना के समय उम्मीद का अस्पताल पटना एम्स ही बन गया था, वहीं पर सरकार के बड़े अफसर मंत्री भर्ती हो रहे थे। इसके बाद भी पटना एम्स को पूरी तरह से खड़ा होने में कई साल लग गए। पटना एम्स बिहार का मुख्य अस्पताल बनता जा रहा है, यही कारण है कि यहां पर हर दिन इलाज कराने 3000 से 5000 नए पुराने मरीज आते हैं। हमें यहां एक सवाल करना चाहिए, यहां आने वाले हजारों मरीज बिहार के दूसरे सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत के कारण आते हैं या दिल्ली जाने के बजाय यहां आते हैं? यह भी देखना होगा कि दिल्ली एम्स में इलाज पटना एम्स के इलाज की तुलना में सस्ता है या महंगा। कई जांच के रेट पटना एम्स में बहुत ज्यादा हैं। रीजनेबल चार्जेस के नाम पर गरीब मरीजों के लिए पटना एम्स बहुत महंगा पड़ता है, जबकि एम्स जाना जाता है गरीब से गरीब मरीजों के इलाज के लिए। इसके बाद भी पटना एम्स अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन इस बात को कैसे स्वीकार किया जाए कि यहां फैकल्टी के कई पद खाली हैं? 300 से अधिक मंजूर पदों में से 167 पद खाली हैं। नेफ्रोलॉजी के विभाग में एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है जहां किडनी का इलाज होता है। थायराइड और मधुमेह की बीमारी वाले विभाग में एक भी विशेषज्ञ नहीं है। न्यूरो विभाग में भी कोई डॉक्टर नहीं है। यहां सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के भी 157 पद खाली हैं। फैकल्टी ना आने से लेकर अस्पताल के पूरी तरह से चालू होने के कई कारण। पटना एम्स पर सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 6 साल में इसे 496 करोड़ दिए गए, लेकिन 158 करोड़ खर्च नहीं हो पाया, यानी पैसे की कमी तो नहीं हो सकती है। एम्स का एक मकसद अच्छे डॉक्टर और अच्छे मेडिकल टीचर पैदा करना है। अगर एम्स में पद खाली हैं, तो यह बता रहा है कि सरकार एम्स को लेकर कितनी गंभीर है। एम्स के अलावा सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के जरिए डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर भी बात कीजिए। इसके जरिए कितना समय लगता है किसी नियुक्ति को पूरा होने में पता कीजिए। 2018 में सीएजी ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा की थी। सीएजी की रिपोर्ट में भुवनेश्वर एम्स का जिक्र आया है, उससे पता चल रहा है कि किस तरह काम हो रहा है। एम्स भुवनेश्वर में फैकल्टी की भर्ती के 84 मामलों की समीक्षा की गई। पता चला कि 7 सहायक प्रोफेसर और 1 एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती हुई है जिनके पास पढ़ाने का अनुभव नहीं था या पर्याप्त योग्यता नहीं थी। अभी हम नर्सिंग, फार्मा और टेक्निकल स्टाफ की गुणवत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, उनके बिना तो अस्पताल पूरा हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि 6-6 एम्स बन जाने के बाद भी दिल्ली एम्स में मरीजों का आना कम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली एम्स में 2019 में देश भर से 44 लाख से अधिक मरीज इलाज कराने आए, 2018 में 38 लाख से अधिक मरीज आए थे। एक साल में 6 लाख से अधिक मरीज बढ़ गए। 22 एम्स के बनने की घोषणाएं हो चुकी हैं और ज्यादातर को किसी न किसी रूप में चालू किया जा चुका है, तब भी दिल्ली एम्स से मरीजों का भार कम नहीं हुआ है। एम्स दिल्ली हर साल अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करता है। 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एम्स में फैकल्टी के 336 पद खाली और बिना फैकल्टी वाले 2129 पद खाली हैं, जिनमें नर्सिंग स्टाफ वगैरह आते हैं। इस साल 3 दिसंबर को लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली एम्स में सहायक प्रोफेसर के 389 पद खाली हैं, सीनियर रेजिडेंट के 576 पद खाली हैं। सवाल है कि एम्स में फैकल्टी क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है? क्या इसलिए कि सरकारी नौकरी ठेके पर मिल रही है, पेंशन नहीं है, सरकारी भर्तियां कम निकलती हैं? हम ये सवाल केवल एम्स के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, अन्य सरकारी अस्पतालों के संदर्भ में भी कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र के हों या राज्यों के। अगर इसी तरह से डॉक्टरों के पद भरने में देरी होती रही तो देश और राज्यों के स्तर पर फिर कोरोना की तीसरी लहर के समय हम उसी बात का रोना रोते रहेंगे कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। आज दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल थी। हमारे सहयोगी ने कई डॉक्टरों से इस बारे में बात की।
सरकारी नौकरी आप लोग जाना नहीं चाहते हैं या क्या दिक्कत आती है?
सरकारी नौकरी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी तभी जा पाएंगे। गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत ही रेयर निकालती है, एडहॉक जो भी वैकेंसी निकल रही है वो एडहॉक ही निकल रही है। परमानेंट वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट निकाल ही नहीं रही है। हर साल एक एग्जाम होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का, जिसमें डॉक्टर्स की वैकेंसी लगती है, उसकी पोस्ट भी ग्रेजुअली हर साल डिक्रीज होती जा रही है।
और एडहॉक वालों को प्रेफर आप लोग नहीं करते?
एडहॉक हॉस्पिटल निकालता है जो सिर्फ 89 डेज की होती है और हॉस्पिटल के हाथ में होता है 89 डेज के बाद 89 डेज एक्सटेंड करना है या नहीं।
समस्या आती है, मतलब आप लोग करना भी चाहते हैं?
हम लोग चाहते हैं करना, रेगुलर पोस्ट पे करना, लेकिन जब रेगुलर नहीं मिलती तो मजबूरन हमें एडहॉक ज्वाइन करना पड़ता है।
ये प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि अक्सर नीट पीजी का एग्जाम जो जनवरी में होता है, पहली बात तो वो कोरोना की वजह से सितंबर में हुआ, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें नए डॉक्टर की भर्ती लानी है, जो भर्ती जनरली मई में होनी चाहिए थी अभी तक उसकी काउंसलिंग की भर्ती की डेट ही नहीं आई है। नए डॉक्टर आ ही नहीं पा रहे, पुराने डॉक्टर ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं, उन पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। हम ऑलमोस्ट हफ्ते में 80-80 घंटे काम कर रहे हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, और अभी भी कोर्ट कह रहा है कि 3 हफ्ते और बाद फैसला सुनाएगा कि कब काउंसलिंग आएगी। तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं, हम सारे डॉक्टर, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि मरीजों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए यही अच्छा है कि नया कोरोना का स्ट्रेन भी आ गया है, तो काउंसलिंग थोड़ा जल्दी करा दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके कुछ भी करके इस केस को थोड़ा जल्दी प्रायोरिटी मिले।
सर हम एटस फ्रेश, हम जूनियर्स है, फर्स्ट ईयर्स है, हम एटस फ्रेश 36 hours to 40 hours ड्यूटी करते हैं, सुबह 7:30 बजे जाते हैं तो दूसरे दिन 2 बजे आते हैं। मेरी छोटी बेटी है घर पे, शी ऑलवेज मिसेस मी सो मच, तो मतलब मेरे को लगता है कि हमारे जूनियर्स जल्दी आएंगे तो हमारा बेसिकली फॉर द फ्रेटर्निटी, हमारे ये जो हमारे पेशेंट्स है, पेशेंट केयर के लिए बहुत अच्छा होगा।
क्या सरकार सुन रही है आप लोग?
नहीं सुन रही है ना, इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
पहले हमने साइलेंटली, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है, हमने एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी करी है, हमने अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको आगे लाया है, लेकिन कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। हमें बस ये चाहिए कि काउंसलिंग का प्रोसेस जल्दी हो ताकि हम बेटर पेशेंट केयर दे पाए। हमारे पास मैन पावर जो मैनपावर टू वर्क इज वेरी लेस।
सरकार को समझना चाहिए कि अगर हम काम छोड़ रहे हैं तो इसकी सीरियसनेस कितनी है। हम खुद परेशान हो रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, 100-100 घंटे हम काम कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, पेशेंट केयर भी तो इम्प्रूव नहीं होगी ना हमारी, हम खुद ठीक से नहीं रह पा रहे, पेशेंट को कैसे हम केयर दे पाए। 2 बैचेस काम करिए, 3 बैचेस का, 150 करोड़ की जनता है और इतने ही डॉक्टर्स है, कैसे काम करें हम? और उनको चाहिए कि हम अच्छे से काम करें, ऊपर से पेशेंट एग्रेशन भी हम ही सहन कर रहे हैं।
केंद्र और राज्य स्तर पर डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया पर बात होनी चाहिए। केवल इमारत दिखाकर अस्पताल नहीं घोषित कर सकते। बहुत से डॉक्टर हैं जो प्राइवेट छोड़ सरकारी अस्पताल में काम करना चाहते हैं, मगर बजट से लेकर पेंशन और वेतन के मामले में सरकार को अलग से सोचना होगा। वेतन के अलावा पेंशन का ना होना एक बड़ा कारण है। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पीजी नीट की काउंसलिंग पर रोक लगी है क्योंकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। वहां भी मुद्दा बहुत जरूरी है, लेकिन इसके कारण नया बैच 1 साल लेट हो चुका है। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि वे 30-30 घंटे काम कर रहे हैं, काम का दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। परिमल की ये रिपोर्ट।
मेरे पापा यहाँ सर में चोट लगी, उनका एक्सीडेंट हो गया था परसों, तो ऊपर एडमिट है, उनको जबरदस्ती बाहर कर रहे हैं।
भर्ती नहीं कर रहा हमें।
और इस बार क्या बोल रहे हैं अभी?
हड़ताल पे हैं सब।
पेशेंट
देख रहा, मेरे भाई की ऐसी हालत होगी, दवाई खा खा के यहाँ की, 3 दिन से मैं बैठा मेरे बच्चा लेके, क्या करूँ मैं? गार्ड लोग घुसने नहीं दे रहे हम लोग को।
और डॉक्टर?
डॉक्टर दिखाया ही नहीं, बोलो कोई डॉक्टर ही नहीं आया।
एक दो तीन चार
मरीजों की लाचारी और बेबसी की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। बल्लीमारान के जाहिद अपने रिश्तेदार के साथ तीन अस्पतालों से धक्के खाते सफदरजंग अस्पताल पहुंचे मगर लौटना पड़ा। शिकायत ब्रेन स्ट्रोक की है।
अरविंद हॉस्पिटल वालों ने नहीं लिया, पंथ वालों ने वापस भेज दिया, रेफर कर दिया रामलैया हॉस्पिटल, उन्होंने भी लिया। तो यहाँ लेकर आए, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो लेकर जा रहा है, सफदरगंज लेकर आए, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है लेकर जा रहा है। पब्लिक मर रही है, आदमी मर रहा है, कोई परवाह नहीं है गवर्नमेंट को भी।
इलाज की लाचारी आयानगर से सफदरजंग पहुंची लक्ष्मी की भी है। पेट में पत्थर है, दर्द से परेशान है, पर इलाज न मिलने से मायूस होकर दूसरे अस्पताल जाने को मजबूर है।
अंदर ही नहीं जाने दे रहे, तो डॉक्टर कह रहे हैं हड़ताल पे हैं सब, तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे, कोई देख ही नहीं रहा है।
और आपको शिकायत क्या है?
शिकायत है पेट में बहुत दर्द हो रहा है मेरे दो दिन से।
सफदरजंग अस्पताल ही नहीं, आरएमएल और लेडी हार्डिंग के करीब 4000 रेजिडेंट्स ने खुद को इमरजेंसी सेवाओं से अलग कर लिया है, तो असर मरीजों पर पड़ना लाजमी है।
मैं अकेली आदमी, कोई और साथ नहीं है, अकेला कहाँ जाऊँ, इसको लेके कर आप एम्स जाओ।
क्या नाम है आपका?
मकीना।
कहाँ से है मकीना?
शास्त्री पार्क से। जी, अब कोई और साथ नहीं है मेरे पास, एक हफ्ता तो यहाँ भर्ती रखा, पैप लगा दिया, भगा रहे यहाँ से।
उधर डॉक्टरों की अपनी शिकायत है, नीट पीजी की काउंसलिंग में 7 महीने की देरी से वो नाराज है।
हमें इमरजेंसी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी, तो आज से हमने रूटीन एज वेल एज इमरजेंसी सर्विसेज बंद की है। हमारे भी कुछ लाइफ है, डॉक्टर्स की भी कुछ लाइफ होती है, हम तो मरीज के लिए हमेशा खड़े हैं। आप देख लीजिए कोरोना का दो वेव आया, दोनों वेव में हमारे डॉक्टर्स डट के खड़े रहे, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए मरीजों की सेवा की, लेकिन उनकी भी कोई लाइफ होती है। आप बताइए, एक जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर है, एक ड्यूटी में 36-38 घंटा काम करता है, एक हफ्ते में कम से कम 80-90 घंटे उसे काम करना पड़ता है, वो बिल्कुल हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं।
हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर से पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिलने आए, फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मिले, पर बात नहीं बनी।
आज का टाइम हमको दीजिए, सरकार इस बारे में पूरा प्रयत्न कर रही है और हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि दोनों बातों को डीलिंग किया जाए और काउंसलिंग को अलाउ किया जाए।
नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर देश भर में करीब 45,000 डॉक्टर अस्पताल में नहीं आ पा रहे, तो बाकी डॉक्टरों पर काम का बोझ ज्यादा है, पर इस हड़ताल ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
पिछले कई हफ्तों से इस देश में जो भी इस बात से परेशान है कि उन्होंने दूसरा टीका नहीं लगाया लेकिन सर्टिफिकेट बन गया, कोई उस समय शहर में नहीं था लेकिन सर्टिफिकेट बन गया, ऐसे परेशान लोगों की संख्या एक या दो नहीं है बल्कि अनगिनत है। आए दिन लोग हमें लिखते रहते हैं, कई जगहों से डेटा एंट्री में गड़बड़ी की शिकायत सुनने को मिली है, लेकिन आज बिहार के अरवल जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके लिए जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं मगर सवाल गंभीर है। हंगामा इस बात पर है कि इसमें दो बार नरेंद्र मोदी लिखा है, उनके नाम से एंट्री है मगर एक बार उनकी उम्र 21 साल और एक बार 52 साल दर्ज है। पिता का नाम नहीं लिखा, प्रधानमंत्री भी नहीं लिखा है। इसी तरह अमित शाह का नाम है, सोनिया गांधी, प्रियंका चोपड़ा के भी नाम दर्ज किए गए हैं। इनके नाम इस सूची में कई बार डाले गए हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 करोड़ टीका लगाने के दावे में कितनी कमियां हो सकती हैं। भारत में जगह जगह पर 100 करोड़ टीका लगाने के पोस्टर लगे हैं, प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट की डीपी में भी यही है। क्या हम दावे के साथ कह भी सकते हैं कि 100 करोड़ को टीका लग गया है या 100 करोड़ का सर्टिफिकेट बन गया है, ये कहना सही रहेगा। अगर हम इस आधार पर कोरोना के तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो धोखा निश्चित है। हम कुछ लोगों की आप बीती सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से हमें भेजी है।
मेरा नाम पूनम तंवर है, मैंने अपना वैक्सीन शेड्यूलिंग बुक किया था जो मेरा यहाँ का था सभा कुलगुर्जन का, बट मेरे को कल पता चला कि मेरा वैक्सीनेटेड दिखा रहा है जो बिहार साइड से निकला है।
और आप 24 तारीख को दिल्ली में थे?
हाँ जी, मैं
जब आपका बिहार से वैक्सीन लगने का मैसेज आया, एक बार दिखाइए मैम वो सर्टिफिकेट, ये 24 तारीख का। और आप इस वक्त भी दिल्ली में हैं?
हाँ जी, मैं भी दिल्ली में हूँ और मैंने अपना 25 तारीख को यहाँ मेरा शेड्यूल था तो मैं यहाँ
हूँ। मैंने पहला कोविशील्ड वैक्सीन 1 जुलाई 2021 को लगवाई थी, दूसरा का डेट 2 अक्टूबर 2021 को दिया गया था, किंतु पारिवारिक समारोह के कारण मैं पटना से बाहर था और जब पटना आया तो सेकंड वैक्सीन लगाने की सोच रहा था, तब तक 2 अक्टूबर को ऑटोमेटिक मैसेज आ गया कि हम लोग वैक्सीन ले लिए कोवैक्सीन। हरनौत पीएचसी में हम लोग पहला वैक्सीन लिए थे। तो अब दोबारा कहीं जा रहे हैं तो कह रहा आप तो सेकंड वैक्सीन और फर्स्ट वैक्सीन ले चुके हैं, तब लगवाने की क्या जरूरत है। इस तरह से अब सेकंड डोज हमें नहीं दिया जा रहा है।
घपला तो कई जगहों पर है, आखिर जिसने टीका नहीं लगाया उसका सर्टिफिकेट कैसे आ गया? अरवल जिले की जिलाधिकारी का कहना है कि मामला बेहद सीरियस है, FIR हो सकती है।
ऐसे हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लोगों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने में, और उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली। और सारे लोग वहां जो भी काम कर रहे हैं, MOIC है, BHM है, सभी पे हम लोग जांच करेंगे कहां पे ये ऐसे काम हुआ, जहां नॉट ओनली इन करपी, रिमेनिंग सारे PHC, APHC सभी जगह में हम लोग जांच दल गठित करके पूरे जांच करेंगे और डेफिनेटली FIR होगा।
अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है फिलहाल?
ये लगभग 20 दिन के पहले ही ये जांच CS के द्वारा किए थे। उस जांच में जब ये हो पाया, जांच के बारे में ये फाइंड आउट किया कि ऐसे हुआ, तो 2 ऑपरेटर्स को उन्होंने हटा दिए। लेकिन मेरा भी ओपिनियन है खाली 2 ऑपरेटर्स पे कार्रवाई की है ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी वहां पे जो लोग हैं उनके बारे में जांच करना होगा, कार्रवाई करना होगा, FIR भी होगा।
5 साल में आप जनता ने केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल पर तरह तरह के टैक्स के जरिए 32 लाख करोड़ से अधिक रुपए दिए हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है। उम्मीद है कि ज्यादातर पैसा कोरोना की महामारी के बाद ही लिया गया होगा। इतना पैसा देकर भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दूसरी लहर में ऑक्सीजन नहीं था और टीके का सर्टिफिकेट फर्जी बन जा रहा है। 32 लाख करोड़ आपने केवल पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स के जरिए दिए हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपको पता था कि आपके पास इतना पैसा है? आपको पता था? बिल्कुल पता था, तभी तो आप 100 रुपए से ज्यादा लीटर पेट्रोल भरा रहे थे, दाम दे रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। अब ब्रेक ले लीजिए। सेना के हाथों नागरिकों की मौत की घटना से नागालैंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि हमारे भाइयों की मौत सुरक्षा बलों के हाथों हुई है, ये निर्दोष लोग हैं, दुनिया इसे माफ नहीं करेगी, ये पूरे नागालैंड के लिए काला दिवस है, कोई इस दिन को नहीं भूल सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफ्सपा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट से सुरक्षा बलों को कवच मिल जा रहा है। इस कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस हो रही है। हम बहुत बड़े लोकतंत्र हैं, लोग मांग करते हैं कि इसे हटाया जाए। हर साल केंद्र इस एक्ट को बढ़ाई देता है कि नागालैंड अशांत क्षेत्र है, लेकिन जब शांति की बात चल रही है तब अशांत कैसे है? राज्य के मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। यह घटना शनिवार की है, सेना के एक ऑपरेशन के दौरान आम लोग निशाने पर आ गए, उसके बाद आम लोग भड़क गए और सेना की टुकड़ी को घेर लिया। केंद्र सरकार का दावा है कि खुद को बचाने के क्रम में सेना को फायरिंग करनी पड़ी और आम लोग मारे गए। केंद्र और सेना ने इस घटना पर अफसोस जताया है और जांच की बात स्वीकार की है। इस घटना में 13 ग्रामीण मारे गए हैं, एक जवान की भी मौत हुई है। आज हॉर्नबिल फेस्टिवल रद्द करना पड़ा जो राज्य भर में मनाया जाता है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने घटना के बाद इसकी निंदा की और गृहमंत्री अमित शाह ने भी अफसोस प्रकट किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहली बार राज्य सरकार ने कहा है कि सेना ने लोगों को मारा है। NDTV को इस मामले की FIR की कॉपी मिली है जो पुलिस ने दर्ज कराई है। इसमें लिखा है कि सेना के 21 पारा स्पेशल फोर्सेस ने मौन जिले के ओटिंग गांव के लोगों पर गोली चला दी। FIR में सेना की इस इकाई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसमें यह भी लिखा है कि सुरक्षा बलों का इरादा निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करना था। जब घटना हुई तब उनके साथ कोई पुलिस नहीं थी, ना ही सेना ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी थी। ओटिंग गांव के ये लोग कोयला खदान से लौट रहे थे। इस घटना के बाद इलाके में बहुत नाराजगी फैल गई। सेना ने भी घटना पर गहरा अफसोस जताया है। आज संसद में नागालैंड के सांसद और विपक्ष के सांसदों ने निर्दोष ग्रामीणों की हत्या को लेकर सवाल उठाए। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सांसद तोखेहो येथोमी ने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस एक्ट से नागरिकों के कत्ल का लाइसेंस नहीं मिल सकता है, इसे वापस लिया जाना चाहिए।
सम एनएससी एंड केयर अंडरग्राउंड्स आर मूविंग इन दैट विसिनिटी एंड दे गॉट द इंफॉर्मेशन दैट द अंडरग्राउंड्स वर मूविंग इन टू थ्री व्हीकल्स बट वेयर इज दोस डिजर्ट पीपल दे आर मूविंग इन ओनली वन टिपर मिनी ट्रक एट ऑफ देम सो व्हेन दे अप्रोच दिस 21 पारा ट्रोपोस दे discriminately fire upon them and kill six of them on the spot in the body of the mini truck and the other two were seriously injured. It was in the close vicinity of Oting village and the Oting village is not in Myanmar border. It is in Assam Nagaland border. So the villagers heard about the gun shooting and then they went to see the incident that had taken place in that place. The body of those slain six labors were shifted to another mini truck and wrapped under the tarpaulin. So where they were, since the blood was stained was in the ambush vehicle, they searched for the dead body and they found beneath the tarpaulin.
देखिए 4 और 5 तारीख को नागालैंड में जो हुआ वो नागालैंड के इतिहास में काला दिन माना जाएगा क्योंकि निहत्ते भारतीय नागरिकों को उग्रपंथी समझते हुए भारतीय सेना की एक विशेष यूनिट ने उनपे गोली चलाई और उनकी मृत्यु की और उसके बाद मुठभेड़ में और भी लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही संवेदनशील बात है क्योंकि इस समय भारत सरकार नागा के एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर नेगोशिएशन में है। इस प्रकार की घटना सरकार और लोगों के बीच में एक दरार पैदा करती है, इसलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री दोनों इस मुद्दे पर अपनी जवाबदेही दे, अपनी जवाब दे और साथ ही साथ सारे राजनीतिक दलों को बुलाकर उत्तर पूर्वांचल की बिगड़ती हुई कानूनी व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुलाएं।
अगर विश्वास ऑल पार्टी मीटिंग भी आप डिमांड कर रहे हैं?
हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग भी हम की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए आज नागालैंड नवंबर में मणिपुर में एक आर्मी कर्नल और उनके बीवी और बच्चों को मारा गया। कुछ महीने पहले आसाम और मिजोरम के पुलिस कर्मचारी के बीच में शूटिंग हुई जिसमें पुलिस कर्मचारी मारे गए। तो ये एक प्रकार से हर महीने उत्तर पूर्वांचल के किसी न किसी राज्य में इस प्रकार के कानूनी व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग की हम डिमांड कर रहे हैं।
नागालैंड में यह मामला गंभीर हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना का पूरा ब्यौरा संसद में दिया। उनका कहना है कि भीड़ को तीतर बितर करने के क्रम में गोलियां चली हैं और नागरिकों की मौत हुई है। सेना ने अफसोस जताया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्याधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं।
आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को लेकर सवाल पहले से भी उठते रहे हैं कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक में, लेकिन इस घटना ने आम लोगों के खिलाफ इस एक्ट के बहाने हो रही जातियों के सवाल को फिर से केंद्र में ला दिया है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।